ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कुशासन और लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म की और दिल्ली के साहित्य कला परिषद का वार्षिक नाट्य महोत्सव भरत मुनि रंग उत्सव 2024 आज से शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नव नियुक्त कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक नागरिक को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीमा शक्ति योजना शुरू की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के असंख्य अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी योजना जैसे प्रयासों से भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ नवनियुक्त युवाओं से बात की। उन्होंने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज भाजपा ने झुग्गी बस्ती युवा रोजगार मेले का आयोजन किया। दिल्ली भाजपा के झुग्गी बस्ती विस्तारक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस मेले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन सचदेवा, सांसद रामवीर विधूड़ी और नेता प्रतिपक्ष समेत दिल्ली के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता लगातार दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर दिल्ली के युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिल जाए, इसके लिए भाजपा ने इस मेले का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की शुरुआत की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब महिलाओं को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से हर महीने उनके खाते में 2100 रुपए आएंगे। वहीं संजीवनी योजना को लेकर सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों को अब महंगे इलाज की चिंता नहीं करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेन सचदेवा और अन्य नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कुशासन और लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए पत्र जारी किया। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए और दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। उन्होंने श्री केजरीवाल को यमुना नदी में प्रदूषण, दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर भी घेरा। श्री ठाकुर ने श्री केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया।
इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए, 10 साल में 10 घोटाले कर दिए।
भाजपा द्वारा आरोप पत्र जारी करने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम किया है। श्री केजरीवाल ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने दिल्ली के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सीएम का चेहरा नहीं है।
बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है, तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया?
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। एक रिपोर्ट।
कल वडोदरा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा परीक्षा के बाद अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सचिव ने बताया कि यह फैसला बच्चों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर शहर के कई इलाकों में नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया है। अपने पत्र में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार, रानीखेड़ा और कलंदर कॉलोनी में जन समस्याओं का जल्द समाधान करें। इसके अलावा उन्होंने ऐसे स्कूलों पर भी ध्यान देने के लिए कहा है जहां एक ही कमरे में 2 कक्षाओं के छात्रों को बिठाया जाता है। उपराज्यपाल ने मोहल्ला क्लिनिकों की जर्जर स्थिति और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी कहा है। उपराज्यपाल ने पिछले दिनों दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान लोगों ने अपनी जन समस्याओं से उपराज्यपाल को अवगत कराया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को राजधानी कश्मीरी गेट बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 24 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली NCR में उसकी सप्लाई करते थे। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी RLS वाज ने नागरिकों को उनके चुनावी प्रश्नों और शिकायतों में सहायता के लिए टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को सटीक जानकारी और समय पर सहायता देना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 चुनावी सेवाओं में सहायता चाहने वाले नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। इस हेल्पलाइन पर नागरिक मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, मतदान केंद्र का विवरण, ऑनलाइन पंजीकरण, मतदान की तारीख और अन्य चुनाव संबंधी प्रश्नों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक मतदान संबंधी अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी सहायता प्रदान करती है। नागरिक सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इस हेल्पलाइन पर अपने सवाल और शिकायतों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए चिकित्सा परिषद समिति को निर्देश दिया है कि वो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करे। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया है कि अनिवासी भारतीयों की रिक्त सीटों को भी सामान्य श्रेणी कोटे में परिवर्तित किया जाए और उन्हें राज्य प्रवेश प्राधिकरणों के माध्यम से भरा जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब देश डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है तो कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। प्रवेश अधिकारियों को खाली सीटों के लिए एक नई या विशेष काउंसलिंग आयोजित करने और किसी भी स्थिति में 30 दिसंबर से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि किसी भी महाविद्यालय को विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रदेश केवल राज्य प्रवेश प्राधिकरणों के माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
दिल्ली के साहित्य कला परिषद का वार्षिक नाट्य महोत्सव भरत मुनि रंग उत्सव 2024 आज से शुरू हो गया है। ये महोत्सव मंडी हाउस के लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम में 26 दिसंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में भारत के एकल और युगल नाटकों का मंचन होगा।
चार दिवसीय इस महोत्सव में रंगमंच की समृद्ध परंपरा को सम्मानित करते हुए नामी नाटककारों, निर्देशकों और कलाकारों के नाटकों का मंचन किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन आज जाने माने लेखकों के 3 नाटकों का मंचन किया गया। इनमें सत्यजीत रे द्वारा लिखित और उत्पल झा द्वारा निर्देशित असमंजस बाबू, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित और दुर्गा शर्मा द्वारा निर्देशित आखिरी हिला और अमूल सागर द्वारा लिखित और निर्देशित धुंध शामिल हैं। इन नाटकों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कड़ी में कल प्रख्यात लेखक सआदत हसन मंटो की रचना इंतजार पर आधारित नाटक का मंचन किया जाएगा। इस महोत्सव में दर्शक 26 दिसंबर तक रोजाना शाम 5 बजे से नाटकों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस महोत्सव में आगंतुकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली पुलिस और शिक्षा विभाग ने साइबर अपराध के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपस में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत शहर के स्कूलों में शिक्षकों को बम की धमकी, साइबर स्वच्छता और मादक पदार्थों की रोकथाम के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सरकार का अटल नवाचार मिशन, भारत के नवाचार और उद्यमिता परतंत्र को मजबूती विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन के निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान अटल नवाचार मिशन से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे अटल टिकरिंग लैब किस तरह समस्या समाधान के लिए स्कूलों में नवाचारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है, और आप अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 तथा सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskIR के साथ भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कुशासन और लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। केंद्र सरकार ने 5वीं-8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।